मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षण अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षण, विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा। हमारे संविधान के बहुत से विशिष्ट लक्षण हैं जिनके कारण इसका अन्य संविधानों से विभेद किया जाता है, जबकि इसकी रचना में विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की खोजबीन की गई थी और इसके बहुत से उपबंध अन्य संविधानों से उठाए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई नई बात हो सकती है। जब पहला लिखित संविधान बनाया गया था तब से 100 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। उसके बाद अनेक देशों ने अपने संविधान को लेखबद्ध किया है। इन तथ्यों को जानकर सभी संविधान के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई नई चीज है तो वह यह कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए और अपने देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यद्यपि हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जा सकता है, किंतु उसके रचनाकारों की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षण को एकत्र किया और उसके कार्यकरण में जो दोष प्रकट हुए थे उनके परिहार के लिए उन्हें उपांतरित करते हुए अपने देश की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के लिए अनुकूलित किया। यदि यह पैबंद का काम है तो यह कहना होगा कि सुंदर पैबंद लगाए गए हैं। संविधान सभा में ऐसे सदस्य थे जिन्होंने निर्माणाधीन संविधान की आलोचना करते हुए यह कहा कि हम दास मनोवृत्ति से पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं या यह कि संविधान हमारे देश के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। कुछ लोगों को यह भय था कि इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। यह संविधान 50 वर्षों से चला आया है जबकि हमारे आसपास के देशों में जैसे बर्मा और पाकिस्तान में संविधान खिले और मुरझा गए। इससे भारत के संविधान के आलोचकों के भय निर्मूल सिद्ध हो जाते हैं। द्वितीय, अनेक संशोधनों द्वारा अनुपूरित और 42वें, 43वें और 44वें संशोधन द्वारा 1976-78 में पुनः निर्मित। प्रारंभ में ही यह बता देना उचित होगा कि 1949 के संविधान के कुछ मूल लक्षण 1996 तक किए गए 78 संशोधनों द्वारा पर्याप्त रूप से उपांतरित किए गए हैं। इनमें से 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने 1977-78 में 43वें और 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा उपांतरित संविधान को महत्वपूर्ण बातों में व्यवहारतः पुनः निर्मित किया है। संविधान का 73वां संशोधन अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा पंचायतों की स्थापना और उसके लिए निर्वाचन से संबंधित 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ये सब एक नए भाग 9 में है। इसी से संविधान में एक अनुसूची 11 जोड़ी गई है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा कार्य पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं की स्थापना और उसके लिए निर्वाचन से संबंधित है। इसके द्वारा 1 भाग 9 को अंतः स्थापित किया गया है। इस भाग में 18 अनुच्छेद हैं। इसके द्वारा अनुसूची 12 अंतः स्थापित की गई है जिसमें वे कार्य गिनाए गए हैं जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। यह संविधान 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ है। तृतीय, सबसे लंबा संविधान। भारत के संविधान की यह विशेषता है कि यह विश्व का सबसे लंबा और ब्यौरे वाला संवैधानिक दस्तावेज है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसमें पश्चातवर्ती संशोधनों द्वारा वृद्धि की गई है। बहुत से उपबंधों का निरसन करने के पश्चात भी इसमें दिसंबर 2000 तक 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 1950-1996 के बीच की अवधि में बहुत से अनुच्छेदों का लोप कर दिया गया है। संविधान में 64 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, अर्थात अनुच्छेद 31 का, 31 ग, 35 का, 39 का, 43 का, 48 का, 51 का, 131 का, 134 का, 139 का, 144 का, 224 का, 223 का, 239 का, 239 क ख, 239 क क, 239 ख, 243, 243 क से 243 यछ तक, 244 क, 257 क, 258 क, 290 क, 300 क, 312 क, 323 क, 323 ख, 350 क, 350 ख, 361 क, 363 क, 371 क, 371 झ, 372 क, 378 क, 394 क। संविधान के इतने विशाल होने के अनेक कारण हैं। प्रथम, विभिन्न संविधानों को संचित अनुभवों का समावेश। संविधान के रचयिताओं ने यह प्रयत्न किया कि सभी ज्ञात संविधानों के कार्यकरण से प्राप्त संचित अनुभवों को इसमें समाहित कर लिया जाए और उन संविधानों के प्रकाश में जिन दोषों और कमियों का पूर्वाभ्यास हो सकता है उन्हें दूर किया जाए। उदाहरण के लिए उन्होंने मूल अधिकार के अध्याय की रचना अमेरिकी संविधान के आधार पर की, यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन की प्रणाली स्वीकार की, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार ग्रहण किया और जर्मनी के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रकाश में आपात से संबंधित व्यापक उपबंध जोड़ दिए। दूसरी ओर हमारे संविधान में अन्य संविधानों की अपेक्षा शब्दों की भरमार है, क्योंकि इससे मिलते जुलते उपबंधों के निर्वचन में अन्यत्र दिए गए न्यायिक निर्णयों के परिणाम को उपांतरित करते हुए इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे अनिश्चितता और मुकदमेबाजी कम से कम हो। द्वितीय, विस्तृत प्रशासनिक उपबंध भी सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांतों को अधिनियमित करने से ही संतुष्ट नहीं हुए, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है। उन्होंने प्रशासनिक ब्यौरे की बातों के लिए भी उपबंध करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 को अंशतः अपना लिया। इसका कारण यह था कि लोग उक्त अधिनियम के ब्यौरेवार उपबंधों के आदि थे। संविधान निर्माताओं को यह भी भय था कि देश की वर्तमान स्थिति में यदि प्रशासन के रूप को स्पष्ट नहीं किया गया तो लोग संविधान में उलट पुलट कर देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में, प्रशासन के रूप में परिवर्तन किए बिना संविधान का दुरुपयोग करना बिल्कुल संभव है। संविधान की का इस प्रकार गुप्त विध्वंस रोकने के लिए संविधान में ब्यौरेवार उपबंध किए गए, जिससे कि बिना संविधान का संशोधन किए उसमें परिवर्तन न किया जा सके। संविधान के अधिकतर उपबंधों को भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार करने से नए संविधान का आकार बढ़ गया। 1935 का अधिनियम बहुत लंबा और ब्यौरेवार संविधान था। इसे अधिनियम से उधार इसलिए लिया गया क्योंकि लोग विद्यमान पद्धति से सुपरिचित हो गए थे। लोगों का यह भी विचार था कि यदि संविधान में उन बातों का ब्यौरे से उल्लेख नहीं किया जाता है जो अन्य संविधानों में सामान्य विधानों के लिए छोड़ दी जाती है, तो इस नवजात लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना असंभव हो जाएगा। इससे यह बात साफ हो जाती है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका, सेवाएं, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आदि के बारे में ब्यौरेवार उपबंध क्यों दिए गए हैं। इसे सर्वसमावेशिता के आदर्श के कारण ही भारत के संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के उपबंध बहुत अधिक हैं। संभवतः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधानों में इस विषय पर कुल मिलाकर जितने उपबंध हैं उनसे भी अधिक। तृतीय, समस्याओं का अनोखा होना। देश की विशालता और अनोखी समस्याओं के कारण संविधान का क्लेवर बढ़ गया है। एक पूरा भाग अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में है, एक भाग राजभाषा से संबंधित है और एक अन्य भाग आपात उपबंधों के बारे में है। चतुर्थ, इकाइयों के संविधान भी सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल परिसंघ शासन का संविधान दिया गया है, राज्यों को अपने अपने संविधान बनाने की छूट है। भारत के संविधान में संघ और इकाई दोनों के संविधान सम्मिलित हैं और दोनों पूर्णतः और प्रमितता बनाए गए हैं। परिसंघ की इकाइयों का ऐतिहासिक उद्भव और राजनीतिक विकास अलग अलग था, इसलिए विभिन्न वर्ग की इकाइयों के लिए विभिन्न उपबंध बनाए गए, जैसे भाग ख राज्य भूतपूर्व देशी रियासत, भाग ग राज्य केंद्र शासित क्षेत्र और कुछ छोटे राज्य क्षेत्र जो भाग ग में थे। इसके कारण 1949 के संविधान का मुख्य आकार बढ़ा। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध। यद्यपि ऊपर कहा गया है कि भारत के संविधान में राज्य के संविधान का उपबंध किया गया है, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष प्रास्थिति प्रदान की गई और उसे अपने राज्य का संविधान बनाने की अनुमति दी गई। भारत के संविधान से अन्य उपबंध भी जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं। इसका लागू होना सरकार से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निकाले गए अध्यादेश पर अवलंबित है। इसके लिए अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है। नागालैंड, सिक्किम आदि। संविधान के प्रारंभ के पश्चात भी विशेष उपबंध अंतर स्थापित किए गए हैं। ये विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याओं और मांगों के कारण बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए ये राज्य हैं नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। पंचम, परिसंघीय संबंधों पर विस्तार से विचार। इकाइयों से संबंधित उपबंध तो विस्तार से बनाए ही गए हैं, साथ ही परिसंघ और इकाइयों के बीच और इकाइयों में परस्पर संबंध के उपबंध भी विस्तार से बनाए गए हैं। ये संबंध विधायी या प्रशासनिक दोनों ही हैं। इन्हें सर्वसमावेशी रूप से संहिताबद्ध किया गया है, जिससे जहाँ तक हो सके संघर्ष न हो। भारत के राजनीतिक इतिहास से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे ध्यान में रखते हुए संविधान के रचयिताओं ने उसे एकिक संविधान जैसा रूप दिया। इसी इतिहास के कारण उन्होंने संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कृत्यों के विवरण और प्रशासनिक और अन्य कार्यों के बारे में ब्यौरेवार उपबंध बनाए। ऐसे ही उपबंध अंतर राज्य संबंध और राज्यों के बीच सहयोग और विवादों के निपटारे के लिए बनाए गए हैं। षष्ठ, प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय दोनों प्रकार के अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, मूल अधिकार, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। अमेरिकी संविधान के संशोधनों के नमूनों पर एक अधिकार विलेख है जिसमें व्यक्ति के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मूल अधिकार है, भाग 3। इसके अतिरिक्त निदेशक तत्वों के समाविष्ट करने वाला एक भाग भी है, भाग 4, जो व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करता है किंतु उन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है। ये आयरलैंड के संविधान में अंतर्विष्ट सामाजिक नीति के सिद्धांत की प्रकृति के हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं का यह विचार था कि यद्यपि ये सिद्धांत विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं बनाए जा सकते किंतु फिर भी संविधान में कुछ आधारभूत अप्रवर्तनीय अधिकारों को समाविष्ट करने से भावी शासन पर कुछ नैतिक निर्बंध लग जाएंगे और उससे उनकी नीति उन आदर्शों से नहीं हट पाएगी जिनसे संविधान के निर्माताओं ने प्रेरणा प्राप्त की थी। मूल अधिकारों की सूची भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत बड़ी हो गई क्योंकि संविधान के निर्माताओं को हमारे देश की विशेष नागरिक समस्याओं के कारण कुछ नवीन विषयों को उसमें स्थान देना पड़ा, जैसे अस्पृश्यता निवारक निरोध। इस पूर्वगामी सूची में 42वें संशोधन द्वारा एक उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का अध्याय, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। यद्यपि इसके पीछे कोई विधिक अनुशस्ति नहीं है किंतु इनका निर्वाचन मूल अधिकारों के साथ किया जाएगा। चतुर्थ, लचीला अधिक कठोर कम। भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण यह भी है कि वह लिखित परिसंघ संविधान को लचीलापन प्रदान करता है। संविधान के गिने चुने उपबंधों के संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन की अपेक्षा है और तब भी आधे विधानमंडलों का समर्थन ही पर्याप्त है। शेष संविधान का संशोधन संघ की संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, और यह बहुमत सदन की कुल संख्या का बहुमत भी होना चाहिए। संसद को संविधान के बहुत से उपबंधों में सादे बहुमत से परिवर्तन या उपांतर करने की शक्ति दी गई है। साधारण विधायन के लिए भी इतनी ही अपेक्षा होती है। इसके लिए संविधान में यह अधिकथित है कि इन राज्यों को संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसके उदाहरण हैं क, राज्यों के नामों, सीमाओं और क्षेत्रों का परिवर्तन और राज्यों को अलग करना या उन्हें मिलाना, अनुच्छेद 4। ख, राज्य में विभिन्न परिषद का उत्सादन या सृजन, अनुच्छेद 169। ग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 5वीं अनुसूची का पैरा 7 और 6ठी अनुसूची का पैरा 21। घ, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडलों और मंत्रिपरिषदों का सृजन, अनुच्छेद 239(2). संविधान का अनुपूरक विधायन। लचीलेपन का उदाहरण है संविधान में संसद को विधान बनाकर संविधान की अनुपूर्ति करने के लिए दी गई शक्ति। यद्यपि संविधान के निर्माताओं ने यह प्रयत्न किया कि वे सभी बातों के लिए उपबंध कर दें, फिर भी उन्हें यह अनुभव किया कि भविष्य में होने वाले सभी घटनाओं के लिए पूर्वानुमान करना और संविधान में सभी परिस्थितियों के लिए समयों के लिए ब्यौरेवार उपबंध कराना संभव नहीं है। क, अतएव संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में कुछ आधारभूत सिद्धांत अधिकथित हैं। संविधान द्वारा संसद को इन सिद्धांतों की अनुपूर्ति विधान द्वारा करने की शक्ति दी गई है। उदाहरणार्थ, नागरिकता के विषय में अनुच्छेद 5(8) भारत के संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के अर्जन के बारे में कुछ शर्तें अधिकथित करते हैं। अनुच्छेद 11 इस विषय पर विधान बनाने की संपूर्ण शक्ति केंद्र को देता है। इस शक्ति के अनुसरण में संविधान ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। भारत में नागरिकता की विधि का पूरा अवलोकन करने के लिए संविधान के अध्ययन के साथ ही नागरिकता अधिनियम को भी देखना आवश्यक है। 2, इसी प्रकार निवारक निरोध के विरुद्ध कुछ मूलभूत रक्षोपाय अधिक कथित किए गए हैं। अनुच्छेद 22(7) संसद को इस विषय के संबंध में कुछ अनुसांगिक विषयों पर विधान बनाने की शक्ति देता है। इस शक्ति के अधीन बनाई गई विधि को अनुच्छेद 22 के उपबंधों के साथ पढ़ना होगा। 3, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है किंतु यह उपबंध करता है कि अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को अस्पृश्यता के विरुद्ध संवैधानिक प्रतिषेध के अनुपूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 4, संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आधिकारिक उपबंध अधिकथित हैं। जनता, अनुच्छेद 71(3)। संसद को विधान द्वारा संवैधानिक उपबंधों की अनुपूर्ति की शक्ति देता है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया है। इस स्कीम का स्पष्ट लाभ यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि को समय की मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ख, संविधान में ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं जो प्रायोगिक या अनंतिम हैं और वे तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक संसद उस विषय पर विधान नहीं बनाती है। उदाहरणार्थ, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, अनुच्छेद 285, राज्य के विरुद्ध वाद, अनुच्छेद 301। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान के मूल पाठ को परिवर्तित करने या उसकी अनुपूर्ति करने के लिए बहुत से ढंग अपनाए गए हैं जिससे अनुकूलन की शक्ति बनी रहे। इस तथ्य की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर वेयर ने कहा था, संशोधन प्रक्रिया के ये विभिन्न ढंग बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, किंतु सामान्यतः ये पाए नहीं जाते। इसी प्रज्ञानता का उदाहरण तब दिखाई पड़ा जब सिक्किम को, जो ब्रिटिश काल से संरक्षित राज्य था, संविधान से पहले संयुक्त राज्य के रूप में 35वां संशोधन अधिनियम और तत्पश्चात संघ के पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संशोधन अधिनियम 1975 लाया गया। पंचम, लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता की संगति। अमेरिका के लिखित संविधान के पीछे मूल विधि का जो सिद्धांत है, उसको इंग्लैंड के अलिखित संविधान के पीछे संसदीय प्रभुता के सिद्धांत के साथ सुमेलित करना भारतीय संविधान के निर्माताओं के उदार दर्शन का परिणाम है। इसे पंडित नेहरू ने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। हम इस संविधान को अधिक से अधिक ठोस और अस्थायी बनाना चाहते हैं, किंतु संविधान अस्थायी नहीं होते, इसमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। यदि इसे कठोर और अस्थायी बनाएंगे तो आप राष्ट्र का विकास अवरुद्ध कर देंगे। एक जीवन प्राणवान विकास, वान जनता का विकास। हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि परिवर्तित दिशाओं में उसे अनुकूलित न किया जा सके। जब संपूर्ण विश्व परिवर्तन से गुजर रहा है और हम एक तीव्र गति से होने वाले संक्रमण का अनुभव कर रहे हैं, तो हम जो आज कर रहे हैं वह कल के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। हमारे संविधान की नमनीयता का उदाहरण इस तथ्य से दिया जा सकता है कि उसके कार्यकरण के प्रारंभ के 50 वर्षों में उसमें 83 बार संशोधन किए गए हैं। पहले चौथे, 24वें, 25वें, 29वें, 42वें, 44वें, 73वें और 74वें संशोधन द्वारा संविधान में मार्मिक परिवर्तन किए गए हैं। इनमें मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति में किए गए संशोधन सम्मिलित हैं। डॉक्टर जेनिंग्स ने हमारे संविधान को दो कारणों से कठोर बताया है। संशोधन की प्रक्रिया जटिल और कठिन है। ख, जो विषय सामान्य विधान के लिए छोड़ दिए जाने थे, उन्हें संविधान में रख लिया गया है, इसलिए इन विषयों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। हम यह देख चुके हैं कि पहले 5 दशकों में संविधान के कार्यकरण से यह आशंका उचित नहीं जान पड़ती कि संविधान की प्रक्रिया कठिन है, किंतु उनके तर्क का दूसरा भाग सुआधारित है। वस्तुतः इस बात पर उनकी टिप्पणियां सत्य हो गई है। उन्होंने अनुच्छेद 224 का उदाहरण देते हुए कहा है कि इस उपबंध में संविधान में सम्मिलित करना आवश्यक था। उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 224 है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में बैठने के लिए सशक्त करता है। क्या यह संवैधानिक महत्व का ऐसा उपबंध है कि इसे संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, और क्या यह ऐसा उपबंध है कि इसका संशोधन संघ की संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 लोगों के अनुमोदन के बिना नहीं होना चाहिए। सारणी 4 से यह प्रकट होता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस बुलाने के स्थान पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए इस अनुच्छेद का संशोधन करने के लिए 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का संशोधन करना पड़ा। इसी प्रकार का संशोधन इस बात के लिए करना पड़ा कि यदि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है तो वह प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, अनुच्छेद 222। इसी प्रकार का संशोधन प्रतिकर का उपबंध करने के लिए किया गया। ऐसे उदाहरण और अधिक देने की आवश्यकता नहीं, इसके अनेक दृष्टांत हैं। 1976 के बाद जो संशोधन किए गए हैं उनसे सुनम्यता को का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। चौथाई शताब्दी तक संविधान के कार्यकरण के पश्चात 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा तात्विक परिवर्तन किए गए, जिससे राज्य के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बिगड़ गया। इस नमनीयता के पीछे यह उपधारणा भी है कि सत्तारूढ़ दल का संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत है। हो सकता है कि यह सच ना हो। षष्ठ, संविधान में अभिसमयों की भूमिका। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के रचयिताओं ने मूल विधि की एक सर्वा समावेशी संहिता बनाने का प्रयास किया, किंतु जहां वह चुप है उन बातों में संविधान की अनुपूर्ति अभिसमयों द्वारा किए जाने के लिए स्थान शेष है। उदाहरण के लिए संविधान में अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया है, किंतु इंग्लैंड में मंत्रिमंडलीय प्रणाली के कार्यकरण में समय समय पर उत्पन्न समस्याओं के हल के रूप में जिन अनेक अभिसमयों का जन्म हुआ उन्हें संहिताबद्ध करना स्पष्ट नहीं था। दृष्टांत के लिए यह प्रश्न कि क्या जब भी लोकसभा में मंत्रिमंडल के प्रतिकूल मतदान हो तो क्या मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए, वह उसे किसी विशेष विषय पर आकस्मिक हार या तत्काल मत माना जा सकता है। संविधान में यह संभव नहीं है कि यह बताया जा सके कि कौन से विधायक विवादक को मंत्रिपरिषद द्वारा मार्मिक विवादक समझा जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे विवादक पर मंत्रिपरिषद की हार पर उसे त्यागपत्र देना नैतिकता का तकाजा होगा। इसी प्रकार किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद के लिए यह उचित होगा कि वह प्रतिकूल मत हो जाने पर त्यागपत्र देने के स्थान पर राष्ट्रपति को संसद का विघटन करने की सलाह दे, यह सब अभिसमय द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। सर आइवर जेनिंग्स का यह संप्रेषण उचित जान पड़ता है कि शासन का तंत्र सार्वान रूप से ब्रिटिश है और ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ब्रिटिश संवैधानिक अभिसमय उसी रूप में समाविष्ट कर लिए गए हैं। सप्तम, मूल अधिकार और संवैधानिक उपचार। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु भाग तीन में सम्मिलित मूल अधिकारों को ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर प्रवर्तित किया जा सकता है जिसके मूल अधिकार का राज्य अर्थात कार्यपालिका या विधायिका के किसी कार्य द्वारा उल्लंघन हुआ है, और इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की रिटें संविधान द्वारा प्रत्याभूत की गई हैं। मूल अधिकारों के विरुद्ध विधि को या कार्यपालिक के आदेश को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। इन उपबंधों से गलत आशंका के फलस्वरूप कुछ आलोचकों ने भारत के संविधान को वकीलों के लिए वरदान कहा है। सर जेनिंग्स के अनुसार इसका कारण यह है कि संविधान सभा में अधिवक्ता राजनीतिज्ञों की प्रमुखता थी। उन्होंने व्यक्तियों के अधिकार और परमाधिकार रिटों को संहिताबद्ध करने का विचार किया, यद्यपि इंग्लैंड में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। सर आइवर के शब्दों में, इंग्लैंड का कोई भी अधिवक्ता संविधान के परमादेश रिटों को रखने का विचार नहीं करेगा, किंतु संविधान सभा ने ऐसा किया। इन सब बातों के कारण भारत में संविधान एक अत्यंत जटिल संविधान हो गया है। हमेशा जो अपने आप को संवैधानिक अधिवक्ता मानते हैं वे अपनी वृत्ति के इस प्रकार उत्थान को प्रसन्न होकर देख सकते हैं, किंतु संविधान का आशय शासन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है। उसका उद्देश्य संवैधानिक अधिवक्ताओं को फीस उपलब्ध कराना नहीं है। जितने अधिक मुकदमे आएंगे उतना ही सरकार की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। संभवतः भारत ने वकीलों पर बहुत अधिक विश्वास किया है। न्यायिक पुनर्विलोकन से संविधान की विधिकतावादी हो जाना। इन महान संवैधानिक विशेषज्ञों के प्रति परम आदर प्रकट करते हुए यह निवेदन है कि इन संप्रेषणों से यह प्रकट होता है कि वे भारतीय संविधान के आधार को समझ ही न सके। सर आइवर यह नहीं बताते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका के परिसीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया, इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता के सिद्धांत को नहीं। इंग्लैंड में आधुनिक लोकतंत्र का जन्म स्वेच्छाकारी कार्यपालिका की निरंकुशता के विरोध में हुआ था। इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली का आधार वहां के जनता का अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सद्भावना में असीम विश्वास है। हाल में उसके सर्वशक्तिमान प्राधिकार में कुछ कमी की जा रही है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर की प्राचीन संस्था अनेकानेक वर्तमान समस्याओं का इतनी सरलता से प्रबंध करने में असमर्थ है जैसी वह विक्टोरिया के युग में करती थी। फिर भी इंग्लैंड में किसी ने भी यह नहीं सोचा कि संसद के प्राधिकार पर कुछ मर्यादाएं लगाई जाए जिससे कि उनका आचरण उचित हो। अमेरिकी संविधान के मूल निर्माताओं को यह दुखद अनुभव हुआ था कि प्रतिनिधिक निकाय भी अत्याचारी हो सकता है। उनका औपनिवेशिक साम्राज्य से सामना हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा में यह उल्लेख है कि ब्रिटिश विधानमंडल ने अपनी अनुचित अधिकारिता को हमारे ऊपर लादने का प्रयत्न किया और किस प्रकार ब्रिटेन की जनता ने न्याय की पुकार को अनसुना किया। उपनिवेशवादियों को बहुत महंगी कीमत चुकाकर यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य प्रकृति कितनी कोमल और छुईमुई जैसी है। इसी पार्लियामेंट ने चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया था, जिसमें यह था कि पार्लियामेंट की सम्मति के बिना कोई कर उद्गृहित नहीं किया जाएगा। उसी पार्लियामेंट ने 1765 में और उसके पश्चातवर्ती वर्षों में उपनिवेशों पर उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार दिए बिना कर लगाने और बल दिया और इन अलोकतांत्रिक विधियों को सैनिक शासन के माध्यम से प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड की जनता निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में विधि की सर्वोच्चता स्थापित करके और संसद को विधि का एकमात्र स्रोत बनाकर रुक गई। अमेरिकी जनता इससे आगे बढ़ी और उसने यह स्थापित किया कि विधानमंडल के ऊपर भी विधि है, और इस परमोच्च लिखित विधि में जो निबंधन है उनसे उसे निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के भय से मुक्ति मिल सकी। यह दोनों दुर्गुण मनुष्य की प्रकृति में ही पाए जाते हैं। आगे मूल अधिकार के अध्याय में यह अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि भारत में ब्रिटेन के विधि सम्मत शासन लागू होने का जो भारतीय अनुभव था वह सुखद नहीं था। जनता में यह भावना प्रबल थी कि विदेशी शासकों ने इसे वैसी सम्मान से प्रशस्ति नहीं किया जैसी वे अपने देश में करते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई करने वालों को यह मालूम था कि इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली की भूलों का उनके लिए क्या प्रयोग किया गया था, अर्थात संसद की प्रभुता और विधि सम्मत शासन का प्रयोग साम्राज्यवादी शासन के अधीन मानवीय अधिकारों को कुचलने के लिए किया गया था। इसलिए 1928 में स्वतंत्र भारत के उदय के बहुत पहले मोतीलाल नेहरू समिति ने इस बात पर बल दिया, हमें सबसे पहले अपने मूल अधिकारों को इस प्रकार प्रत्याभूत करना है कि किसी भी परिस्थितियों में उन्हें छीना ना जा सके। न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारों का आवश्यक अनुषंगी है। लिखित संविधान में व्यक्ति के कुछ अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में स्थापित करना अर्थहीन है यदि वे राज्य द्वारा राज्य के किसी अंग के विरुद्ध विधायिका या कार्यपालिका प्रवृत्त नहीं किए जा सकते हैं। जब एक बार यह चुनाव कर लिया जाता है तब हम इस बात पर दुख व्यक्त नहीं कर सकते कि इससे मुकदमेबाजी होगी। भारत के संविधान के बनने के समय भारत में कुछ लोगों के मन में जो भी शंकाएं रही हो, भारत में आज शायद ही कोई हो जो इस कारण से व्यथित हो कि उच्चतम न्यायालय प्रत्येक वर्ष दर्जनों कानूनों को और प्रशासनिक कृत्यों को इस आधार पर अविधिमान्य कर देता है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही यह बता देना भी उचित होगा कि संविधान के प्रारंभ के पश्चात संविधान में संशोधन द्वारा अनेक उपबंध अंतः स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से निकाला गया है। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 31 का 31 ग 2000 तक 284 अधिनियमों को केंद्र और राज्य के नवी अनुसूची के अधीन जो अनुच्छेद 31 ख से संबंधित है प्रगणित करके मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन से छिपा लिया गया है। अष्टम, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति युक्त स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान का एक अन्य प्रमुख लक्षण है। हमने एक दूसरी अतिवादी स्थिति से अपने को बचा रखा है, वह है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक पुनरावलोकन पर अत्यधिक बल देने का तार्किक परिणाम न्यायिक सर्वोच्चता होती है। यह हमें अमेरिकी अनुभव से पता चलता है। विधि सम्मत शासन के प्रहरी के रूप में न्यायालयों द्वारा संविधान के अधीन प्रयोग की जाने वाली राज्य की न्यायिक शक्ति संविधान का आधारिक लक्षण है। न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता, हमारे संविधान ने संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया है वह हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का अत्यंतिक संतुलन संभव नहीं है और व्यवहार में अंतिम निर्णय उनमें से किसी एक का ही होना चाहिए। इसी कारण शक्तियों का कठोर पृथक्करण और विभिन्न अंगों पर रोक और संतुलन की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली वास्तविक कार्यकरण में असफल रही। न्यायपालिका ने संविधान के निर्वचन की शक्ति के अधीन इतनी प्रभुता प्राप्त कर ली है कि उसे संविधान का सुरक्षा वॉल्व या संतुलक कहा गया है। उन्हीं के एक न्यायाधीश ने यह कहा था कि संविधान वही है जो उच्चतम न्यायालय कहता है। उसे यह शक्ति है कि वह विधानमंडल द्वारा सम्यक्तः पारित किसी विधि को न केवल इस आधार पर अविधिमान्य कर दे कि वह संविधान द्वारा निहित विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करती है या अधिकार विलेख में समाविष्ट प्रतिषेधों का अतिक्रमण करती है, बल्कि इस आधार पर भी कि वह सम्मक प्रक्रिया जैसी कुछ अस्पष्ट अभिव्यक्तियों में समाविष्ट साधारण सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये सिद्धांत संविधान में अभिव्यक्त रूप से लिखबद्ध नहीं है, इन्हें केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा परिनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिकी न्यायपालिका विधायिका की नीति पर निर्णय देती है मानो वह विधानमंडल का तीसरा सदन या परम सदन हो। इंग्लैंड के संविधान के अधीन संसद सर्वोच्च है और वह ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से असंभव ना हो। न्यायालय संसद के किसी अधिनियम को किसी भी आधार पर शून्य घोषित नहीं कर सकती। मैं के शब्दों में, संविधान ने संसद को अपनी अधिकारिता के अधीन सभी विषयों और व्यक्तियों पर जो प्राधिकार दिया है उसकी कोई सीमा नहीं बांधी है। कोई विधि न्याय विरुद्ध और शासन के आधारित सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है, किंतु पार्लियामेंट के विवेक का नियंत्रण नहीं हो सकता, और जब वह भूल करती है तो उन भूलों का सुधार वह स्वयं ही कर सकती है। इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने पार्लियामेंट के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में बैठने की शक्ति ग्रहण करने से इनकार किया है। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और संसद के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। इसके लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर दे यदि वह संविधान में उपबंधित शक्तियों के वितरण के अनुसार विधानमंडल की शक्ति के बाहर है अथवा यदि वह संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है अथवा वह संविधान के किसी आज्ञापक उपबंध का उदाहरणार्थ अनुच्छेद 286, 299, 301, 304 आदि का अतिक्रमण करती है। किंतु साथ ही न्यायपालिका को विधायिका की नीति का प्रज्ञान का अर्थात नीति के औचित्य का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है। इसमें सम्यक प्रक्रिया जैसी अभिव्यक्तियों को नहीं रखा गया है और स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे मूल अधिकारों को विधानमंडल के विनियमन के अधीन रखा गया है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में सम्यक प्रक्रिया को एक प्रकार से अनुच्छेद 21 में समाविष्ट माना है। यदि किसी मामले में न्यायपालिका रुकावट डालती है तो संघ की संसद विशेष बहुमत से संविधान के मुख्य अंश में परिवर्तन कर सकती है। इस संबंध में भारतीय संविधान के पीछे जो सिद्धांत है उसे पंडित नेहरू के शब्दों में अभिव्यक्त करना ही श्रेयस्कर है। संसद की प्रभुत्व संपन्न इच्छा के ऊपर कोई उच्चतम न्यायालय कोई न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं ला सकती क्योंकि संसद की इच्छा समस्त जन इच्छा है। वह इस प्रभुत्व संपन्न इच्छा को रोक सकती है यदि वह गलत राह पर है किंतु अंतिम विश्लेषण में जब समाज के भविष्य का प्रश्न है तब न्यायपालिका मार्ग में बाधा नहीं पहुंचा सकती। अंतोगत्वा तथ्य तो यह है कि विधानमंडल ही सर्वोच्च है और सामाजिक सुधारों के मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारा संविधान विधानमंडल को संविधान की सीमाओं के भीतर यथासंभव सर्वोच्च स्थान देता है, किंतु जैसा हम पहले उल्लेख कर चुके हैं 42वें संशोधन के कारण संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ गया था। संविधान अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 घ 32 क 131 क 144 क 226 क 228 क 323 क ख 329 का से नए उपबंध अंतर स्थापित करके संसदीय प्रभुता की स्पष्ट झुकाव हो गया था। जनता सरकार ने 1977 में सत्ता में आने के बाद सारवान रूप से 1976 के पूर्व की स्थिति वापस ला दी है। यह 1977-78 में 43वें और 44वें संशोधन के माध्यम से निम्न अनुच्छेदों का निरसन करके किया गया है जो 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर स्थापित किए गए थे। अनुच्छेद 31 घ 32 क 131 क 144 क 226 क 228 क 329 क और 226 को उनके मूल रूप में पुनः लाया गया है। न्यायपालिका ने यह घोषित करके कि न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे संविधान का आधार लक्षण है अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक उच्चतम न्यायालय स्वयं इस निमित्त अपनी राय का पुनरीक्षण नहीं करता तब तक संविधान के किसी उपबंध के उल्लंघन के आधार पर किसी विधान के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान का संशोधन करके छीना नहीं जा सकता क्योंकि उस संशोधन को ही हमारे न्यायालय अविधिमान्य घोषित कर देगा। नवम, मूल अधिकार विधानमंडल द्वारा युक्ति युक्त विनियमन के अधीन। हमारे संविधान में मूल अधिकारों की जो अनूठी घोषणा है वह संविधान की सर्वोच्चता और विधानमंडल की प्रभुता के बीच संतुलन का उदाहरण है। संविधान में अधिकार विलेख को समाविष्ट करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु हमारे संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की प्रत्याभूति को राज्य की सुरक्षा के आवश्यकता के साथ संविधान सावधानी से संतुलित किया गया है। अमेरिकी अनुभव से यह प्रकट होता है कि मूल अधिकारों की लिखित प्रत्याभूति इस समाज और राज्य के प्रति व्यष्टिपरक दृष्टिकोण को जन्म देती है। ऐसा दृष्टिकोण सामान्य जनकल्याण के लिए अनिष्टकारक साबित हो सकता है। अमेरिका ऐसी परिस्थिति के खतरों से बच गया है क्योंकि उसकी न्यायपालिका ने पुलिस शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके अधीन विधानमंडल के अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम हो जाता है जहां कहीं वे अधिकार राज्य की सुरक्षा और अन्य सामूहिक हितों के लिए स्पष्ट खतरा बन जाते हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक मूल अधिकार को संविधान के निबंधनों के अधीन विधायी नियंत्रण में रखा गया है। उसे प्रत्येक मामले में न्यायिक संरक्षण प्राप्त होने की आशा में लटकाया नहीं रखा गया। कुछ ऐसे भी अपवादिक मामले हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता या कल्याण के हित में मूल अधिकारों को पूरी तरह अपवर्जित किया जा सकता है। दसम, सामाजिक समानता भी संविधान द्वारा प्रत्याभूत। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय की एक और विशेषता यह है कि वह न केवल राजनीतिक या विधिक समानता सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक समानता भी। इस प्रायः दी जाने वाली प्रत्याभूति के अलावा कि राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा नियुक्ति या अन्य नियोजन की दशा में विभेद नहीं करेगा। संविधान में यह उपबंध भी सम्मिलित है कि अस्पृश्यता का सभी रूप में प्रतिषेध होगा। यह भी अधिकथित किया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी सामाजिक सुविधा या विशेषाधिकार के उपभोग से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में हमें यह बात दृष्टिगोचर होती है कि अमेरिका के संविधान में मूलवंश पर आधारित विभेद आज भी बना हुआ है, यद्यपि हाल ही के न्यायिक निर्णय इसके प्रतिकूल हैं। यूनाइटेड किंगडम में हुई वर्तमान घटनाओं से यह भी प्रकट होता है कि वहाँ भी स्थिति इससे अच्छी नहीं है। मूल अधिकारों पर मूल कर्तव्यों द्वारा रोक। 11. संविधान में एक नया लक्षण 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क के रूप में अनुच्छेद 51 का अंतर स्थापित करके जोड़ा गया है। 1976 का 42वां संशोधन। मूल संविधान के अधीन संविधान के भाग 4 के निर्देश किसी भी प्रकार से प्रवृत्त नहीं किए जा सकते थे और उन्हें मूल अधिकारों के सामने समर्पण करना पड़ता था, किंतु 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग का संशोधन करके चुपचाप इस स्थिति को उलट दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 4 के सभी निर्देशों को भाग 3 के मूल अधिकारों से सुरक्षा प्राप्त की गई, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने इस उद्देश्य को विफल कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31 जिन्हें अधिनियमों के अनुच्छेद 13 के उल्लंघन के कारण संवैधानिक होने से सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अनुच्छेद 39 ख और ग को क्रियान्वित करते हैं, भाग चार में सम्मिलित अन्य विधेयक तत्वों के लिए नहीं। 42वें संशोधन अधिनियम ने इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मूल अधिकारों की को सीमित करने के लिए मूल कर्तव्य अंतर्विष्ट किए। इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। 12. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वजनिक मताधिकार। लिंग, संपत्ति, कराधान आदि को किसी अर्हता के बिना सार्वजनिक मताधिकार को स्वीकार करना भारत के लिए एक साहसिक प्रयोग है, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि हमारा देश विशाल है, इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और अधिकतर लोग निरक्षर हैं। भारत में मताधिकार इंग्लैंड या अमेरिका की अपेक्षा अधिक व्यापक है। संविधान की उद्देशिका में हमने यह घोषणा की है कि भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। उसके पीछे यह संकल्पना है कि जनता प्रभुत्व संपन्न है। यह संकल्पना खोखली हो जाएगी यदि उन समस्त लोगों को जो अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ हैं मताधिकार न दिया जाए। मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र की स्थापना की गई है। आधुनिक लोकतंत्र के मताधिकार ही ऐसा प्रभावी माध्यम है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रभुता जनता के हाथ में है। संविधान के अधीन 1952 में जब भारत में साधारण निर्वाचन हुए थे, उनसे संबंधित आंकड़ों से यह बात प्रकट होती है कि कुछ बड़ी बड़ी कठिनाइयों के होते हुए भी यह साहसिक प्रयोग सफल हुआ। 35 करोड़ 60 लाख की कुल जनसंख्या और 18 करोड़ की वयस्क जनसंख्या में से 17 करोड़ 30 लाख मतदाता सूची में दर्ज किए गए और इनमें से 8 करोड़ 80 लाख ने अर्थात निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट 50% से अधिक मतदाताओं ने वास्तव में मताधिकार का प्रयोग किया। जितने व्यवस्थापूर्ण ढंग से ये 11 साधारण निर्वाचन हुए, उन्हें देखकर सभी उनसे इस विशाल उपमहाद्वीप की जनता की राजनीतिक सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं। यद्यपि यह जनता निरक्षर है, 11वें साधारण निर्वाचन में जो 1996 में हुए, निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट व्यक्तियों की संख्या लगभग 55 करोड़ थी। संविधान के रचयिताओं की इस बात के लिए भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। इसी कारण भारत का सुखद रक्त स्नान विभाजन हुआ। नए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अंगल भारतीय समुदाय के लिए कुछ स्थानों के सिवाय आरक्षण नहीं किया गया था। यह आरक्षण भी अस्थायी अवधि के लिए था। 12. हम यह पहले ही बता चुके हैं कि हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य में शासन की जिस पद्धति की स्थापना की है, वह ब्रिटेन की जैसी संसदीय प्रणाली है। शासन प्रणाली के इस विकल्प को चुनने का प्राथमिक कारण यह था कि भारत शासन अधिनियम के अधीन लोगों को इस प्रणाली का सुदीर्घ अनुभव था। यद्यपि यह भी सत्य है कि ब्रिटिश लोगों ने इसके लक्षणों को पूरी तरह से भारत में बहुत धीरे धीरे आयात किया। हमारे संविधान के निर्माताओं ने शासन की राष्ट्रपति प्रणाली जैसे कि वह अमेरिका में है स्वीकार नहीं की। यह अस्वीकृति का आधार यह था कि उस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसके कारण इन दोनों में संघर्ष की संभावना है। हमारे इस नवीन लोकतंत्र में इस संघर्ष का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। यद्यपि संसदीय या प्रतिमंडलीय शासन का ब्रिटिश आदर्श अपनाया गया, किंतु शीर्ष पर एक अनुवांशिक सम्राट या शासक को प्रतिष्ठापित नहीं किया गया, क्योंकि भारत ने अपने अपने आप को गणराज्य घोषित किया था। सम्राट के स्थान पर संसदीय पद्धति के शीर्ष पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति रखा गया। इस सम्मिश्रण को अपनाते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने आयरलैंड के दृष्टांत का अनुसरण किया। आयरलैंड के संविधान के समान ही भारत के संविधान में उत्तरदायी शासन की संसदीय प्रणाली पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति स्थापित किया है। संसदीय शासन के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति का संयोजन। यद्यपि संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति है, किंतु उसे मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होता है। वह इस प्रकार मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं, इस बात को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रतिकूल कार्य करता है तो उसे हटाने का महाभियोग के सिवाय कोई और ढंग नहीं है। इंग्लैंड की पद्धति में विधानमंडल के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत अभी समय पर आधारित है, किंतु हमारे संविधान में यह अभिव्यक्ति के रूप में उपबंधित है। हमारा संविधान आयरिश नमूने का हूबहू नकल नहीं है। आयरलैंड के संविधान में यह अधिकथित है कि राष्ट्रपति की संविधानिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर ही किया जा सकेगा। इसके अपवाद स्वरूप वे शक्तियाँ हैं जो संविधान में राष्ट्रपति के विवेकानुसार प्रयोग के लिए इंगित हैं। उदाहरण के लिए, आयरलैंड के राष्ट्रपति को हारे हुए प्रधानमंत्री के कहने पर विधानमंडल के विघटन से इनकार करने का विवेकाधिकार है। यह इंग्लैंड के अभिसमय और व्यवहार से विपरीत है, किंतु भारत के संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करने के लिए प्राधिकार देने वाला कोई उपबंध नहीं है। दूसरी ओर, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) का संशोधन करके इस सिद्धांत को अभिव्यक्त रूप से संहिताबद्ध किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग में अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में पहले ही अधिकथित किया था। 1948 का 44वां संशोधन। जनता सरकार ने 42वें संशोधन के इस परिवर्तन को छेड़ा नहीं। उन्होंने 1978 के 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकेगा। 15वां, एकीकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली। भारतीय संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने परिसंघ प्रणाली को एकीकृत सरकार के कापल प्रदान किया। सामान्यतः सरकार परिसंघ प्रणाली की है, किंतु संविधान परिसंघ के एकीकृत राज्य में परिवर्तन होने के लिए समर्थ बनाता है। यह आपात में किया जाता है। एक ही संविधान में परिसंघ और एकीकृत प्रणालियों का यह संयोजन विश्व में अनूठा है। इस अनोखी प्रणाली का रही सही अधिमूल्यन करने के लिए यह आवश्यक है कि उस पृष्ठभूमि का अवलोकन किया जाए जिस पर भारत में परिसंघ रचना स्वीकार की गई है। साथ ही अन्य परिसंघीय देशों के अनुभवों को ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। इस पर अलग से विचार करना उचित होगा। 16वां, देशी रियासतों का विलय। नए संविधान का विशेष लक्षण यह है कि 552 देशी रियासतों संविधान के अधीन शेष भारत में विलीन हो गई। वह समस्या जो भारत शासन अधिनियम 1935 के रचयिताओं से हल नहीं हो रही थी और जिसके कारण परिसंघ स्कीम सफल नहीं हो सकी, उसे संविधान के निर्माताओं ने सफलतापूर्वक हल कर दिया। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक हो गया और एक राज्य के रूप में एकीकृत हो गया। यह विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस कठिन कार्य को जिस प्रक्रिया से किया गया है वह अपने आप में स्मरणीय है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन देशी रियासतों की परिस्थिति। भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त होने वाले संवैधानिक सुधारों के समय भारत के नाम से ज्ञात भौगोलिक इकाई दो भागों में विभाजित हो गई, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 गवर्नरों के प्रांत थे और भारत सरकार द्वारा शासित कुछ क्षेत्र थे। देशी रियासतों में लगभग 600 रियासतें थीं जो अधिकतर शासकों या स्वामियों के व्यक्तिगत शासन के अधीन थीं। सभी देशी रियासतें एक समान नहीं थीं। उनमें से कुछ रियासतें अनुवांशिक प्रमुखों के शासन के अधीन थीं जिनकी राजनीतिक परिस्थिति मुसलमानों के आक्रमण के पहले से चली आई थी। कुछ दूसरी रियासतें जिनकी संख्या लगभग 300 थी, शासकों द्वारा दी गई संपदा या जागीर के रूप में थी जो सेवा के लिए या अन्यथा पारितोषिक के रूप में विशेष व्यक्तियों या कुटुंबों को दी गई थी। ब्रिटिश भारत से ये रियासतें जिसे एक बात में भिन्न थी वह यह थी कि देशी रियासतों को ब्रिटिश सम्राट द्वारा अपने अधीन नहीं किया गया था, अतएव ब्रिटिश भारत सम्राट के प्रत्यक्ष शासन के अधीन था। यह शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा और संसद के कानूनों और ब्रिटेन के विधानमंडल के अधिनियमों के अनुसार चलाया जाता था। देशी रियासतों प्रमुखों और राजाओं के व्यक्तिगत शासन के अधीन चल रही थी। सम्राट का इन पर अधिराजत्व था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राधिकार लेने पर सम्राट ने भारत के समस्त राज्य क्षेत्र पर अधिराजत्व ग्रहण किया। परमोच्च शक्ति के अनुषंग। सम्राट द्वारा अधिराजत्व ग्रहण करने के पश्चात और उनके देशी रियासतों के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए परमोच्चता पद का प्रयोग किया जाने लगा। सम्राट और देशी रियासतों के बीच अनेक प्रकार के वचनबंध थे। इन वचनबंधों का एक सामान्य लक्षण यह था कि देशी रियासतें अपने आंतरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी और सम्राट उनके विदेशी संबंधों और प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। देशी रियासतों का कोई अंतर्राष्ट्रीय जीवन नहीं था और विदेशी प्रयोजनों के लिए उनकी वही स्थिति थी जो ब्रिटिश भारत की थी। आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सम्राट की नीति सामान्यतः शासकों के शासन में हस्तक्षेप न करने की थी, किंतु कुशासन या कुप्रशासन के मामले में सम्राट हस्तक्षेप करता था। इस प्रकार सम्राट अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को निपटाने के लिए हस्तक्षेप करता था, अतएव आंतरिक क्षेत्र में भी देशी रियासतों को हस्तक्षेप के विरुद्ध कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस सब के होते हुए भी देशी रियासतों के शासकों के कुछ व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार थे और वे सामान्यतः अपने व्यक्तिगत प्रशासन चलाते थे, जिस पर पड़ोसी ब्रिटिश भारत के राज्य क्षेत्रों की राजनीतिक और संवैधानिक हलचलों का प्रभाव नहीं होता था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तावित परिसंघ स्कीम में देशी रियासतों का स्थान। भारत शासन अधिनियम 1935 में संपूर्ण भारत के लिए परिसंघ संरचना की कल्पना की गई थी, जिसमें देशी रियासतों गवर्नरों के प्रांतों के साथ इकाई के रूप में सम्मिलित होती, किंतु अधिनियम के निर्माताओं ने देशी रियासतों को प्रांतों से दो तात्विक बातों में विभिन्न रखा और अंतोगत्वा इस विभेद के कारण स्कीम विफल हो गई। विभिन्नता दो बातों की थी, प्रांतों का परिसंघ में अधिमिलन अनिवार्य या समय होने वाला था, किंतु देशी रियासतों की दशा में वह स्वैच्छिक और राज्यों के शासन के विकल्प पर आधारित था। ख प्रांतों की दशाओं में प्रांतों पर परिसंघ का प्राधिकार अधिनियम द्वारा बनाए गए संपूर्ण परिसंघ क्षेत्र पर था। देशी रियासतों की दशा में परिसंघ के प्राधिकार का विलय विलेख से परिसीमित किया जा सकता था और सभी अवशिष्ट शक्तियां रियासतों में निहित थी। 1935 की योजना के बारे में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, देशी रियासतों का प्रस्तावित परिसंघ में विलय नहीं हुआ और अधिनियम के इस भाग को 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब अंतिम रूप से छोड़ दिया गया। जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स अपनी योजना लेकर भारत आए तो यह स्पष्ट रूप से समझा गया कि उनके द्वारा प्रस्तावित योजना में ब्रिटिश भारत के राजनीतिक भविष्य की ही बात होगी और देशी रियासतों को अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। मंत्रिमंडलीय मिशन के प्रस्ताव। किंतु मंत्रिमंडलीय मिशन ने यह उपधारणा की थी कि देशी रियासतें भारत के नए विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगी, अतः उन्होंने यह सिफारिश की कि भारत का एक संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों ही, और जो केवल विदेश कार्य, प्रतिरक्षा और संचार का कार्य करेगा, उन्हें छोड़कर शेष शक्तियां राज्यों में निहित होगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधीन परमोच्चता की स्थिति। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया तो उस अधिनियम की धारा 7(1) में यह घोषित किया गया कि सम्राट का अधिराजत्व समाप्त हो गया है। इस अधिनियम का हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, 7(1) नियत दिन से। ख हिज मजेस्टी का देशी रियासतों पर अधिराजत्व व्याप्त हो जाएगा और इसके साथ ही इस अधिनियम के पारित किए जाने की तारीख पर प्रवृत्त सभी संधियां और करार जो हिज मजेस्टी और देशी रियासतों के शासकों के बीच किए गए थे, उस तारीख को हिज मजेस्टी द्वारा देशी रियासतों के बाबत प्रयोग किए जाने वाले सभी कृत्य, उस तारीख को विद्यमान हिज मजेस्टी के देशी रियासतों के शासकों के प्रति सभी बाध्यताएं और उस तारीख को किसी देशी रियासत के संबंध में किसी संधि अनुदान रूढ़ी सहन की गई या अन्यथा सभी शक्तियों अधिकार प्राधिकार या अधिकारिता व्यापक हो जाएंगे, परंतु पैरा ख में किसी बात के होते हुए भी उसमें निर्दिष्ट ऐसे करार के उपबंध को यथासंभव सीमा शुल्क, यातायात और संचार, डाक तार या इसी प्रकार के विषयों के बाबत प्रभावी किया जाता है रहेगा, जब तक कि प्रश्नगत उपबंधों को देशी रियासतों के शासकों द्वारा त्याग न दिया जाए या डोमिनियन या प्रांतीय उसके किसी उपबंध भाग द्वारा त्याग न दिया जाए या पश्चातवर्ती करार द्वारा अधिष्ठित न किया जाए। यद्यपि अधिराजत्व समाप्त हो गया और देशी रियासतों ने अपनी वही स्थिति पुनः प्राप्त कर ली जो सम्राट द्वारा अधिराजत्व ग्रहण करने के पहले थी, किंतु अधिकतर राज्यों ने यह अनुभव किया कि उनके लिए शेष भारत से पृथक या स्वाधीन रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं है और यह उनके अपने हित में है कि वे भारत और पाकिस्तान में दो डोमिनियनों में से किसी एक में अपने आप को विलीन कर लें। भारत की डोमिनियन की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित राज्यों में से हैदराबाद, कश्मीर, बहावलपुर, जूनागढ़ और पश्चिमोत्तर प्रांत सीमा प्रांत की रियासतों को छोड़कर सभी रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले भारत डोमिनियन में अधिमिलन कर चुकी थी, अर्थात नियत दिन के पहले। अधिमिलन के पश्चात राज्यों के बारे में भारत सरकार की समस्या दो प्रकार की थी, क देशी रियासतों को समुचित आकार की प्रशासनिक इकाई का रूप देना, ख उन्हें भारत की संवैधानिक संरचना में यथोचित स्थान देना। अ पहले उद्देश्य की पूर्ति के समेकन के लिए एक तीन चरण वाली प्रक्रिया अपनाई गई। एक 216 रियासतों उन प्रांतों में सम्मिलित कर दी गई जिनके वे भौगोलिक रूप से निकट थीं। इन विलीन रियासतों को को संविधान की पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। विलय की यह प्रक्रिया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रियासतों के तत्कालीन उड़ीसा प्रांत में 1 जनवरी 1948 के विलय के से प्रारंभ हुई और जनवरी 1950 में पश्चिम बंगाल राज्य में कूच बिहार के विलय से समाप्त हुई। 2, 61 रियासतों को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया और उन्हें संविधान की पहली अनुसूची के भाग ग में सम्मिलित किया गया। एकीकरण का यह तरीका उन मामलों में अपनाया गया जिसमें प्रशासनिक सामरिक या अन्य विशेष कारणों से केंद्र का नियंत्रण आवश्यक समझा गया। 3, एकीकरण का तीसरा तरीका था देशी रियासतों के समूह को नई जीवनक्षम इकाइयों में समेकित करना। इन्हें राज्य संघ नाम दिया गया। इस प्रकार बनाया गया पहला संघ स्वराष्ट्र संघ था जिसमें काठियावाड़ और कुछ अन्य रियासतें मिलाई गई थी। अंतिम संघ था ट्रावनकोर कोचिन संघ जो 1 जुलाई 1949 को बना। 275 रियासतें इस प्रकार सम्मिलित करके 5 संघ बनाए गए। मध्य भारत पाटियाला और पूर्वी पंजाब संघ, राजस्थान सौराष्ट्र और ट्रावणकोर कोचीन। इन्हें पहले अनुसूची के भाग ख के राज्यों में सम्मिलित किया गया। भाग ख में सम्मिलित अन्य 3 राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति इन सबसे विशेष थी। जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन किया और उसे भाग ख राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, किंतु भारत सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई कि इस अधिमिलन को राज्य की जनता की पुष्टि के अधीन किया जाएगा। बाद में नवंबर 1956 में एक संविधान सभा ने इसकी पुष्टि की। हैदराबाद ने प्रारूपतः भारत में अधिमिलन नहीं किया, किंतु निजाम ने एक उद्घोषणा की जिसमें संघ के साथ संवैधानिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता स्वीकार की और अपनी रियासत की संविधान सभा के अनुमोदन के अधीन रहते हुए भारत के संविधान को अंगीकार किया। उस राज्य की संविधान सभा ने इसका अनुसमर्थन किया। परिणाम स्वरूप हैदराबाद को संविधान की पहली अनुसूची के भाग ख राज्यों में सम्मिलित किया गया। हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार भाग ख राज्यों को प्रशासन के जीवनक्षम इकाइयों के रूप में परिवर्तित किया गया। यह छोटी छोटी रियासतों के प्रांतों में विलय किए जाने या केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में परिवर्तित किए जाने और बड़ी बड़ी देशी रियासतों के सम्मिलित किए जाने से बची हुई रियासतें थीं। बाद की 2 प्रकार की रियासतों को शेष भारत में बनाए गए संविधान में समुचित स्थान देने की कोई समस्या नहीं थी। भारत सरकार और इस प्रकार विलीन प्रत्येक रियासत के शासक के बीच एक करार था जिसके द्वारा स्वेच्छा से विलय के लिए सहमति दी थी और राज्यों के शासन के लिए सभी शक्तियां डोमिनियन सरकार को सौंप दी थी। केवल अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार आरक्षित रखे। किंतु भाग ख राज्यों की विलय की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। 1947 में भारत के डोमिनियन में अधिमिलन के समय राज्यों ने केवल 3 विषयों के लिए अधिमिलन किया था, अर्थात प्रतिरक्षा, विदेश कार्य और संचार। संघ की रचना के बाद और राजनीतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप शासकों को यह लगा कि भारत संघ से और घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। सभी संघों के राजप्रमुखों ने और मैसूर के महाराजा ने पुनरक्षित विलय विलेखों पर हस्ताक्षर किए जिनके द्वारा सभी रियासतें संघ सूची और संवर्ती विधायी सूची में सम्मिलित सभी विषयों के की बाबत भारत डोमिनियन में विलीन हो गई। इसमें अपवाद स्वरूप केवल कराधान संबंधी विषय था। इस प्रकार भाग ख राज्यों के समकक्ष ले आया गया। इनमें भेद केवल उन्हीं विषयों के बारे में था जो अनुच्छेद 338 में समाविष्ट थे। साथ ही 10 वर्ष की अंतकालीन अवधि के लिए केंद्र को अधीक्षण की शक्ति दी गई। कश्मीर की विशेष स्थिति और समस्या के कारण उसके लिए विशेष उपबंध किया गया। उस अनुच्छेद में भारत के संविधान के उस राज्य को उस राज्य की सरकार की सहमति से भागतः लागू किए जाने का विशेष उपबंध है। यह ध्यान देने योग्य है कि 5ों संघों के राजप्रमुखों ने तथा हैदराबाद, मैसूर और जम्मू कश्मीर के शासकों ने उद्घोषणा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया। राज्यों का पुनर्गठन। एकीकरण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संविधान अधिनियम 1956 पारित किया गया जिसे भाग ख राज्यों का वर्ग समाप्त कर दिया गया और भाग ख और ख राज्यों को एक ही सूची में सम्मिलित कर दिया गया। भाग ख राज्यों से संबंधित संविधान के सभी विशेष उपबंधों का लोप कर दिया गया। इस प्रकार देशी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो गया और वे भारत के संविधान में समाहित इकसार राजनीतिक संगठन का भाग बन गई। पुनर्गठन की यह प्रक्रिया अभी चल ही रही है। वर्तमान में ऐसी छोटी इकाइयों की मांग को स्वीकार करने की ओर झुकाव दिखाई पड़ता है जो पहले भाग ख राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यों के स्वशासी भाग के रूप में थे। इन्हें राज्य की प्रस्तुति प्रदान की जा रही है। उदाहरण के लिए नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है। इस प्रक्रिया पर आगे अध्याय 6 में विस्तार से विचार किया जाएगा। संविधान के अति विशिष्ट और आधारभूत लक्षण। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि गोलकनाथ के मामले में जो संप्रेक्षण उच्चतम न्यायालय ने किए थे और जिसके परिणाम स्वरूप केशवानंद में जो यह कहा गया कि संविधान के कुछ आधारभूत लक्षण हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संविधान की शक्ति से परे रखा गया है। न्यायालय के अनुसार ये विवक्षित मर्यादाएं हैं। इंदिरा सरकार अनुच्छेद 268 का संशोधन करके इस सिद्धांत को समाप्त करने पर लगी हुई थी। ये संविधान 24वें संशोधन अधिनियम 1971 से प्रारंभ होकर संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 तक किए गए संशोधन हैं। इनका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को निष्प्रभावी करना था। इस संशोधन के होते हुए न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण छोड़ा नहीं है। इस अध्याय में हम इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। इस पर आगे अध्याय 10 में विचार किया जाएगा। संविधान के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट होता है कि इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिनके आधार पर यह अन्य संविधानों से भिन्न है। इन विशेष लक्षणों को इस अध्ययन में संक्षेप में बताया गया है जिससे पाठक भारत के संविधान के विभिन्न उपबंधों से परिचित हो जाएं। अध्याय समाप्त।